Arnomi.
जय जय श्री राधा किशोर भगवान की जय। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय। गौर निताय की जय। श्री गौपाल महाराज की जय। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन जानो कूल। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन जानो कूल। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लती कर मूल। भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लती कर मूल। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध चरण रेणु भजन अनु माधवती भक्ति जननी जतन पालन कोरी। माधवती भक्ति जननी जतन पालन को कृष्ण बसती बसती बोली। कृष्ण बसती परम आदर बोली। परम शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। गौर आमार जब साने करलो भ्रमण रंगे। गौर आमार जब साने करलो भ्रमण रंगे। ते सब स्थान हेरी बोयामी। ते सब प्रणय भगत संगे। पर शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। मृदंग वाद सुनित मन अवसर सदा जाते। वाद सुनित मन अवसर सदा जाते। गौर विहित कीर्तन सुनी। गौर आनंद हृदय नाचे। आनंद शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भगत च
जुगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद होय। जुगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद होय। जुगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद होय। जुगल परम प्रसाद सेवा करते होय। प्रसाद सेवा करते होय। सकल प्रपंच जय। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। चरण रेणु भजन ये दिन ग्रहे भजन देखी ग्रहे ते गोलक भाय। भजन देखी रहते गोल ओ जे दिन गोहे। भजन देखी रहते गोलक भाय। जे दिन भजन देखी रहते गोल चरम सिंधु देखिया गंगा। चरण सिंधु देखिया गंगा। सुख सा सीमा पाय। सुख सा शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। भजन तुलसी देखे जुड़ाय प्राण माधव तो शनि जानी। माधव तो तुलसी देखे जुड़ाय प्राण माधव तो शन जानी। तुलसी गौर प्रिया साथ सेवने सेवने। जीवन सार्थक मानी। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। भजने अनुकूल पाय जा। भगति कृष्ण भजने अनुकूल पाय जा। भगति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाय जा। भगति अनुकूल प्रति दिवस परम सुख प्रति प्रति दिवस परम सुख स्वीकार करो यो स्वीकार स्वीकार करो ये आशुद भगत चरण रेणु भजन यनो पूल चरण रेणु भजन राधा माधव कुंज बिहारी जय बिहार जय राधा माधव कुंज बिहारी जय कुंज बिहार गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन यशोदानंदन व्रज जन नंदन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वन यमुना तीर वन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रमा जय गौरानिताय 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 जय ताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल ताय गौर हरि बोल ताय गौर जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय महाराज की जय।
प्रभुपाद लीलामृत की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नयस्थकी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। हम श्रीमद् भागवतम के बजाय रूपा लीलामृत पर पाठ करेंगे और शीर्षक है लोअर ईस्ट साइड के आगे। प्रभुपाद ने भारत में ही बैक टू गॉडहेड पत्रिका प्रारंभ की थी, जबकि वे 1930 के दशक से लेख लिखते रहे थे, किंतु 1944 में कलकत्ता में उन्हीं ने अकेले ही इस पत्रिका का शुभारंभ किया। अपने गुरु महाराज के इस अनुरोध के पालन के लिए कृष्ण भावनामृत का प्रचार वे अंग्रेजी के माध्यम से करें। इसके प्रकाशन के लिए वे बड़ी कठिनाई से अपने दवाइयों के व्यापार से प्रति मास 400 रुपया की व्यवस्था कर पाते थे। अकेले ही वे पत्रिका के प्रत्येक अंक के लिए लेख लिखते। जय श्री राधा की दर भगवान की जय, जगन्नाथ बलि सुभद्रा मैया की जय, श्री गौर निताय की जय। उसे संपादित करते, प्रकाशित करते, उसके लिए धन जुटाते और उसकी एक एक प्रति का वितरण करते। प्रारंभ के उन वर्षों में बैतू गोड़हेड की ही प्रभुपाद का प्रमुख साहित्य कार्य और प्रचार का मिशन था। उनके मन में इस पत्रिका के व्यापक वितरण का स्वप्न था और उन्होंने भगवान चैतन्य के संदेश को संसार भर में फैलाने की योजनाएं बना रखी थी। उन्होंने प्रमुख देशों की सूची बना रखी थी कि कहां इस पत्रिका की कितनी प्रतियां भेजी जा सकती है। उन्होंने इस योजना में वित्तीय सहायता के लिए अनुदान की याचना की, किंतु सहायता बहुत नगण्य थी। तब 1951 में उन्होंने अपनी सारी शक्ति श्रीमद् भागवत के लिखने और प्रकाशित करने की दिशा में लगाए, किंतु अब वे बैतू गोड़हेड को पुनर्जीवित करना चाह रहे थे और इस बार यह काम अकेले नहीं करने वाले थे। इस बार वे इसका भार अपने शिष्यों को सौंपने वाले थे। ग्रेग स्कार्फ को, जो हाल की दीक्षा के बाद गर्ग मुनि हो गया था, एक छापखाना का पता चला। क्वींस की एक ग्रामीण क्लब अपना छोटा सा छापखाना बेचने की कोशिश में थी। प्रभुपाद को उसमें दिलचस्पी और वे गर्द मुनि और कीर्तानंद को साथ लेकर किसी की गाड़ी में मशीन देखने के लिए क्वींस गए। वह पुरानी थी लेकिन अच्छी हालत में थी। ग्रामीण क्लब का प्रबंधक उसके लिए $250 चाहता था। प्रभुपाद ने मशीन का निरीक्षण सावधानीपूर्वक करने के बाद प्रबंधन के बात की और उसे अपने आध्यात्मिक मिशन के बारे में बताया। प्रबंधक ने एक दूसरे प्रेस का उल्लेख किया जो उसके पास था और कहा कि इन दोनों में से एक भी उनके काम की नहीं है। प्रभुपाद ने कहा कि वो दोनों छापखानों का $250 देंगे। ग्रामीण क्लब को सचमुच उन मशीनों की जरूरत नहीं थी। उसके अतिरिक्त प्रबंधक को लगा कि उसे स्वामी जी की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि वे समस्त मानवता के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संदेश का मुद्रण करने वाले थे। वह सहमत हो गया। प्रभुपाद ने गर्भ मुनि और कीर्तानंद से मशीनें गाड़ी में दलवा ली और इस तरह इस्कान के पास अपना मुद्रक प्रेस हो गया। श्री प्रभुपाद ने बैक टू गोड़हेड पत्रिका के संपादन का भार हयग्रीव और रायराम को सौंप दिया। स्वामी जी ने अनेक वर्षों तक बैक टू गोड़हेड पत्रिका को अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति अपनी व्यक्तिगत सेवा के रूप में निकाला था। अब वे वही पत्रिका विद्यालय के अंग्रेजी अध्यापक हयग्रीव और व्यवसायिक लेखक राय राम और उनके अपने गुरु की सेवा के लिए दे रहे थे। हयग्रीव तथा राय राम ने अल्प काल में ही प्रथम अंक के लिए सामग्री संकलित करके उसे छापने की तैयारी कर ली। वह अवकाश की रात्रि थी, न सार्वजनिक कीर्तन था, न व्याख्यान, और प्रभुपाद अपने ऊपर के कमरे में श्रीमद् भागवत के अनुवाद में व्यस्त थे। नीचे प्रथम अंक की छपाई घंटों से चल रही थी। रायराम ने स्टेसिल टाइप कर लिए थे और मुद्रण के समय वह मशीन के पास घबराया खड़ा। वह प्रत्येक पृष्ठ की छपाई देख रहा था और दाढ़ी पर हाथ फैलता हुआ हूं हूं कर रहा था। अब समय हो गया था कि सभी पृष्ठों को एकत्र करके हर प्रति को स्टेपल पर दिया जाए। स्टेसिल के पत्रिका की 100 प्रतियां छप गई थी। 2 आवरण पृष्ठों के अतिरिक्त 28 पृष्ठों वाली पत्रिका की 100 प्रतियां बिना वार्निश की गई 2 बेंचों पर लगा दी गई, जिन्हें रफेल ने गर्मियों में तैयार किया था। कुछ भक्त पत्रिका के पृष्ठों को एकत्र करके उन्हें क्रम से पल करते जाते थे। वे पृष्ठों के ढेर के सामने से गुजरते, एक पृष्ठ उठाते, उसे पहले पृष्ठ के नीचे रखते और इस तरह जब वे बेंच के अंतिम सिरे पर पहुंच जाते तो सारे पृष्ठों का समूह गर्ग मुनि को दे देते, जो अपने बड़े बड़े बालों को झाड़कर आंखों से ऊपर करता खड़ा था। वह प्रत्येक प्रति को इन स्टेपलों से जोड़ता जाता था। उन्हें ब्रह्मानंद बोर्ड ऑफ एजुकेशन के कार्यालय से लाया था। यहाँ तक कि हयग्रीव भी वहाँ उपस्थित था, जो ऐसे छोटे मोटे कार्यों में सामान्यतया हाथ नहीं लगाता था। वह भी लाइन में चलकर पुष्टों को एकत्र करने में लगा था। सहसा बगल का दरवाजा खुला और उन्होंने आश्चर्य से देखा कि स्वामी जी अपनी ओर निहार रहे थे। फिर दरवाजे को पूरी तरह खोलते हुए वे कमरे में दाखिल हुए। वे कभी भी इस तरह छुट्टी की रात्रि में नीचे नहीं आए थे, अतः उन सब में अप्रत्याशित भावना और प्रेम का उदय हुआ और घुटनों के बल झुक कर उन्होंने स्वामी जी को प्रणाम किया। नहीं नहीं कहते हुए उन्हें ऐसा करने से मना करने के लिए उन्होंने अपना हाथ उठाया। उसके बाद कुछ भक्त उठने लगे और कुछ अब भी झुके हुए थे। स्वामी जी बोले, तुम लोग जो कुछ कर रहे हो उसे जारी रखो। जब भक्तजन उठकर खड़े हो गए और उन्होंने अपनी बगल में स्वामी जी को खड़े देखा तो उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, किंतु इतना स्पष्ट था कि स्वामी जी उन्हें बैक टू गॉडहेड पत्रिका छापते हुए देखने के लिए नीचे आए थे। अतः वे शांत भाव से दक्षतापूर्वक कार्य करते रहे और प्रभुपाद पुष्टों की पंक्ति से होकर आगे बढ़ते गए। वे अपनी शाल से हाथ और कलाई बाहर निकाले हुए थे। पत्रिका के पुष्टों की गड्डी को फिर पत्रिका के एक तैयार अंक को हाथ से छूते हुए वे बोले, प्रेस। जगन्नाथ के आवरण पुष्ट का रूपांकन किया था, उसमें उसने मंदिर में अपने द्वारा बनाए गए चित्र की भांति राधा तथा कृष्ण का चित्र शाही से अंकित किया था। यह सरल चित्र था जिसे समकेंद्रिक वृत्तों के अंदर बनाया गया था। प्रथम पुष्ट पर वही आदर्श वाक्य था जिसे प्रभुपाद ने वर्षों तक बैक टू गॉड हेट में मुद्रित किया था। ईश्वर प्रकाश है, अविद्या अंधकार है। जहाँ ईश्वर है वहाँ अविद्या नहीं रहती। उसी पुष्प पर स्वामी जी द्वारा अनुमोदित विलियम ब्लेक के एक उद्धरण को देने का लोग हैग्री रोक नहीं सका था, जिससे कृष्ण भावनामृत की विचारधारा की पुष्टि होती थी। ईश्वर अवतार लेते हैं और ईश्वर प्रकाश है। इन अंकितन आत्माओं के लिए जो रात में रहते हैं किंतु वे अपना साकार रूप प्रदर्शित करते हैं, उन लोगों को जो दिन के राज्य में रहते हैं। यद्यपि संपादी में ब्लैक हिटमैन और ईसा मसीह की चर्चा थी, किंतु जिस बात पर बल था वह था प्रभुपाद भगवान की भक्ति का विज्ञान सीखने अमेरिका आए हैं। उनका संदेश बहुत सरल है सिखाने प्रभुपाद भगवान की भक्ति का विज्ञान सिखाने अमेरिका आए हैं उनका संदेश बहुत सरल है भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उसका कीर्तन अपने आध्यात्मिक गुरु महाराज कृष्ण कृपा श्री मूर्ति एसी श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के आदेश का पालन करते हुए श्री स्वामी भक्ति वेदांत ने 1944 में बैक टू गॉड हेड पत्रिका का पहले सरल प्रकाशन आरंभ किया। 1944-1956 तक वृंदावन से प्रकाशित इस प्राक्षिक पत्रिका ने स्वामी भक्ति वेदांत को भारत के प्रमुख साकारवादी भक्त के रूप में प्रतिष्ठित किया। यह अंक पश्चिम में बैक टू गॉड हेड के प्रथम प्रकाशन को लक्षित करता है। मुख्य लेख जो प्रभुपाद के एक व्याख्यान का सारांश था, उमापति द्वारा तैयार किए गए नोटों पर आधारित था। यह कहा गया है कि जिस समय हम सोने जा रहे हो और जिस समय हम सोकर उठते हो, उस समय हमें अपने मन को हजार बार जूते से पीटना चाहिए। जब हमारा मन यह कहे कि हम हरे कृष्ण का गान क्यों करें, हम LSD क्यों न ले, तब हमें उसी जूते से उसे पीटना चाहिए। किंतु यदि हम कृष्ण के संबंध में सदैव सोचते रहेंगे तो यह पीटना आवश्यक नहीं होगा, हमारा मन हमारा मित्र बन जाएगा। एक अन्य लेख हयग्रीव का था, उधर्वगमन करो और वहीं ठहरे रहो। हयग्रीव ने इस लेख में हार्ट क्रेन और वाल्ट विलहिटमैन से कई उदाहरण दिए थे। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कॉलेजों के बहुत से युवक ऊंचे प्रकार के मादक द्रव्यों के सेवन से स्थायी रूप से उधर्वगमन का प्रयत्न करते हैं। कदाचित उनका कथन है, हम उस नरक में नहीं रहना चाहते हैं जिसका निर्माण आप लोगों ने अपने लिए किया है, इसलिए वे जैसे मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं जो उन्हें भिन्न प्रकार के मनो राज्यों में पहुंचाने के लिए स्प्रिंग बोर्ड का काम करते हैं। किंतु मादक द्रव्यों से प्राप्त यह उधर्वलोक अस्थाई होता है। वह अस्थाई होता है क्योंकि वह कृत्रिम है। आश्चर्य होता है यह देखकर कि ये वास्तव में युवकों को कहां ले जा रही है। हयग्रीव ने अंत में लिखा था कि कृष्ण कीर्तन उधर्व गमन का सबसे तेज उपाय है, जिससे कभी नीचे पतन होता नहीं है। आपके संगी साथी आपको पागल समझेंगे। प्रगति का यह पहला लक्षण है। दूसरों को माया के पीछे पागल होने दिए, जिसका पुराना नाम कामिनी और कंचन है और जो क्षण भंगुर है, उसके स्थान पर आप सत्य के प्रति पागल बनिए। पत्रिका के पृष्ठावरण पर स्वामी जी को स्वामी जी के दो निबंधों कृष्ण दी रिजर्वायर आप प्लेजर आनंद के आगार कृष्ण तथा हु इज क्रेजी पागल कौन के विज्ञान थे और फिर एक सूचना थी। शीघ्र प्रकाश गीतोपनिषद या भगवद गीता यथारूप अनुवादक और भाष्यकार स्वामी भक्तिवेदांत। प्रभुपाद ने संपर्कों को जो पहला निर्देश दिया था वह यह था कि पत्रिका नियमित रूप से प्रति मास निकले, भले ही वे उसका प्रतियों को नहीं बेच पाए या वे केवल दो ही पृष्ठ निकाल पाए तो भी उन्हें इस स्तर को बनाए रखना चाहिए। स्वामी जी ने हयग्रीव को अपने कमरे में बुलाया और उसे अपनी पुस्तक श्रीमद् भागवतम के तीन खंडों का एक सेट भेज दिया। प्रत्येक खंड के आवरण पृष्ठ पर उन्होंने लिखा था कि हयग्रीव दास ब्रह्मचारी को अपने आशीर्वाद सहित ऐसी भक्तिदान स्वामी। हयग्रीव ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए बताया कि अभी तक वह उन्हें धन के अभाव के कारण खरीद नहीं पाया था। प्रभुपाद ने कहा, सब ठीक है, अब तुम बैक टू ऑर्डर का संकलन करो, निष्ठा से काम करो और इसे टाइप पत्रिका जैसी विशाल बना दो। प्रभुपाद चाहते थे कि उनके सभी शिष्य उसमें भाग ले। उन्होंने कहा, आलसी मत बनो, कुछ न कुछ लिखो। वे अपने शिष्यों को यह पत्रिका उनके अपने धर्मोपदेश के लिए प्रदान करना चाहते थे। ब्रह्मानंद और गर्ग मुनि ने उसी रात प्रथम अंक को अपनी अपनी साइकिलों पर लादा और लोअर ईस्ट साइड से लेकर 14th स्ट्रीट तक की प्रमुख दुकानों से होते हुए वे वेस्ट विलेज तक गए और वहां पहुंचने तक उन्होंने सभी 100 पत्रियां वितरित कर दी। धर्मोपदेश में इस प्रकार बढ़ोतरी हुई। अब उनके सभी विद्यार्थियों टंकण संपादन लेखन संकलन और विक्रय में भाग लेने लग गए। निसंदेह धर्मोपदेश प्रभुपाद का था, किंतु वे इसमें अब अकेले नहीं रह गए थे। बैक टू गॉडहेड के दूसरे अंक के संपादी में कहा गया था, 4 मास की अल्पावधि में संघ का इतना पर्याप्त विस्तार हो गया है कि उसे सेकंड एवेन्यू स्टोर फ्रंट के मंदिर से अधिक विस्तृत स्थान की आवश्यकता है। प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क नगर में एक विशाल भवन प्राप्त करने के लिए अपने विचार का त्याग नहीं किया था। ग्रीनविच विलेज में जायदाद खरीदना बहुत व्यवसाय था, नगर के मध्य भाग का प्रश्न ही नहीं था, किंतु प्रभुपाद अब भी कहते कि वे एक भवन खरीदना चाहते हैं। उनके अनुयायियों के लिए यह सोचना ही कठिन था कि कृष्ण भावनामृत में लोअर ईस्ट साइड के लोगों के अतिरिक्त और किसे रुचि हो सकती थी, और फिर किसके पास धन था कि मैनहट्टन में इमारत खरीदने की बात सोचे। किंतु एक दिन रविंद्र स्वरूप की भेंट एक धनाढ्य यहूदी से हो गई, जिनके मन में युवा आंदोलन के प्रति सहानुभूति थी और जो प्रभुपाद को $5,000 ऋण देने को राजी हो गया था। रविंद्र स्वरूप के माध्यम से इस ऋण की व्यवस्था हुई थी और स्वामी जी ने उसे भवन कोष का नाम दिया था। इस कोष में उन्होंने $5,000 धीरे धीरे और जोड़ लिए थे जो उन्होंने आकस्मिक अनुदानों के द्वारा इकट्ठे किए थे, लेकिन उपयुक्त भवनों का मूल्य $1,00,000 से भी $1,00,000 से आरंभ होने के कारण प्रभुपाद की धनराशि बहुत तुच्छ प्रतीत होती थी। ब्रह्मानंद को साथ लेकर प्रभुपाद शिकस्त स्थित में एक इमारत देखने गए जो पहले जुइश प्राविडेंशियल बैंक थी। इसमें एक विस्तृत गोष्ठी कक्ष था, तहखाना था, संगमरमर के फर्श थे और मंदिर के अनुकूल वातावरण था। ब्रह्मानंद ने सुझाव दिया कि वास स्थान का पूर्ण निर्माण करके उसे सेनागार में बदला जा सकता है और प्रभुपाद ने तहखाने को अपने निजी कक्ष के रूप में प्रयोग में लाने का विचार किया। उन्होंने कहा कि विशाल गोष्ठी कक्ष को कीर्तनों और व्याख्यानों के लिए उपयोग में लाया जा सकता था। इमारत से लौटते समय प्रभुपाद को ध्यान आया कि वह एक बस स्टॉप के पास कोने पर स्थित थी। इसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्होंने कहा कि कलकत्ता में बाग बाजार में गौड़ी मठ भी एक बस स्टॉप के निकट स्थित है और जब बसों के इंजन चालू होते हैं तो उनके बड़ा शोर गुल होता है। प्रभुपाद ने इसके बाद लोअर ईस्ट साइड की सिक्स्थ स्ट्रीट में ही टेंपल एमानुएल का भी अवलोकन किया। यह बैंक की इमारत से भी विशाल था और जब स्वामी जी के कुछ शिष्यों ने उसके गुफा सरीखे रिक्त कमरों में घूमकर देखा तो वे यह सोचकर घबरा गए कि यदि यह इमारत मिल भी जाए तो वे किस प्रकार उसकी देखभाल कर सकेंगे या उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। स्वामी जी ने अन्य इमारतों का भी निरीक्षण किया। एक तो इतनी उपेक्षित थी और उनकी हालत इतनी खराब थी कि लगता था कि इसका विध्वंस किया गया है और एक दूसरे की दिशा भी पहली इमारत जैसी थी। उसमें छत तक काठ कबाड़ भरा था। उन्होंने उनके साथ आए हुए रूपानुग से पूछा कि उसका क्या विचार था और रूपानुग ने उत्तर दिया, उसे ठीक करने में बहुत अधिक समय और धन लगेगा, अतः वे वापस चले गए। स्वामी जी अपने कमरों में जाते ही प्रसादन कक्षा में घुस गए जहां टब में उन्होंने अपने पैर धोए। उन्होंने बताया कि यह भारतीय परंपरा है कि बाहर घूमकर लौटने पर पैर धोते हैं। तत्पश्चात भक्तजन श्रीमान प्राइस से मिले जो भव्य वेशभूषा में रहते थे और अचल जायदादों के एजेंट थे। उन्होंने ब्रह्मानंद से कहा, आपके पक्ष में कई अनुकूल बातें हैं, आपका पंजीकरण कर मुक्त धार्मिक संस्था के रूप में है। आपको मालूम नहीं है, मालूम नहीं कि उससे आपका कितना धन बच जाएगा। बहुत सारे लोगों को यह देश इसलिए छोड़ देना पड़ता है कि वे अपना टैक्स नहीं अदा कर पाते, किंतु आप लोगों का संरक्षण कोई ऊपर से कर रहा है और मेरे पास आप लोगों तथा आपके स्वामी के लिए उपयुक्त स्थान है। श्रीमान प्राइस ने ब्रह्मानंद को सेंट मार्कस प्लेस के निकट एक भव्य तिमंजला इमारत दिखाई। नगर के निचले हिस्से में वह अच्छी अवस्थिति की इमारत थी। वह यूको के निकट थी, फिर भी ऐसे क्षेत्र में थी कि कि नगर के ऊपरी हिस्से के लोग वहां आने में सुरक्षा का अनुभव कर सकते। उसके फर्श पॉलिश किए हुए सख्त लकड़ी के थे। सभी किवाड़ों पर हाथ से भव्य अलंकरण किए गए थे। उसमें एक बड़ा हाल था जो मंदिर के उपयुक्त था। मार्विक्स की लाफायट जब सन 1824 ई में आए थे तो इसी इमारत में ठहरे थे। यह एक ऐसा तथ्य था जिससे इमारत के आकर्षण और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो गई थी। एक शाम को श्रीमान प्राइस ने ऊपर प्रभुपाद के कमरे में उनसे भेंट की। प्रभुपाद फर्श पर अपने ड्रेस के पीछे और श्रीमान प्राइस धातु की एक फोल्डिंग कुर्सी पर बैठे। श्रीमान प्राइस इस भव्य सूट पहने थे। उनकी कमीज सफेद रंग की थी। इसमें कफ लिक्स लगे हुए थे और इन कफों पर कलप किया हुआ था। उनके बहुमूल्य परिधान सावधानी पूर्वक संवारे गए। चेहरे तथा सुनहरे बालों, जिसे कुछ भक्त नकली बाल समझ बैठे, कि स्वामी जी की सादगी से एक अद्भुत तुलना प्रस्तुत होती थी। श्रीमान प्राइस स्वामी जी को योर एक्सीलेंसी कहकर संबोधित करते रहे और उन्होंने स्वामी जी के कार्य की बड़ी सराहना की। बड़े आशापूर्ण शब्दों में उन्होंने बताया कि अपने संबंधों से वे किस प्रकार स्वामी जी का बहुत सारा धन बचा लेंगे, उन्हें कष्ट से उबार देंगे और उन्हें वही स्थान उपलब्ध करा देंगे जो प्रभुपाद चाहते थे। कुछ शिष्यों को संग लेकर प्रभुपाद श्रीमान प्राइस के साथ इमारत देखने गए। जब श्रीमान प्राइस प्रभुपाद के शिष्य और इमारत का संरक्षण एक साथ खड़े बातें कर रहे थे, उसी बीच प्रभुपाद बिना किसी का ध्यान आकृष्ट किए कमरे के एक कोने में जा पहुंचे, जहां एक पुरानी सिलाई की मशीन रखी थी। वे मशीन चलाकर उसे देखने लगे। प्रभुपाद जब लोगों के पास वापस लौटे तो श्रीमान प्राइस ने कहा, यदि आप अभी $5,000 दे सके तो मैं मालिकों से अनुबंध लिखवा सकता हूँ। $5,000 अभी देने होंगे, शेष $5,000 दो महीने के अंदर। यह इतना कठिन तो नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद को इमारत पसंद थी और उन्होंने ब्रह्मानंद से उसे खरीद लेने को कहा। ब्रह्मानंद तुरंत धन देने को उन्मुख था, किंतु प्रभुपाद ने कहा कि पहले एक उपयुक्त संविदा पत्र तैयार कर लेना आवश्यक है। श्रीमान ने भक्त से अलग बात की। उन्होंने स्वामी जी के और उनके आध्यात्मिक आंदोलन के हित की बात की और वे संविदा से कुछ अधिक का वचन देते हुए प्रतीत हुए। कदाचित वे उन्हें इमारत ही दे देंगे, पर इमारत दे देंगे दे देने की बात करना तो अर्थ विहीन था। फिर भी उन्होंने इस तरह की कुछ बात कही। वे चाहते थे कि भक्त उन्हें अपना मित्र समझे और एक शाम को उन्होंने भक्तों को अपने घर पर आमंत्रित किया। जब भक्तगण अपने घर पर एकत्रित हुए तो वे श्रीमान प्राइस के रहने के कमरे में कुर्सियों पर तन कर बैठ गए। कमरे में किताबों की अलमारियां पंक्तियों में रखी थी, लेकिन उनमें किताबें नहीं थी, वरना किताबों की पंक्तियां सूचित करने वाले दो आयामी डिजाइन थे। श्रीमान प्राइस भक्तों की चाटुकारी करते रहे। उन्होंने हयग्रीव के लेखन की प्रशंसा की। हयग्रीव को एल्जन और चापलूसी का अनुभव हुआ। श्रीमान प्राइस ने भक्तों की हर चीज की प्रशंसा की। उन्होंने अपने कुत्ते का भी उल्लेख किया जो हाल में ही मर गया था। वे बोले, इन छोटे से जीव पीना घर वाली मालूम होता है। श्रीमान प्राइस विचित्र प्राणी थे, वे स्त्रियों जैसे थे, प्रशंसा और चाटुकारिता से भरे थे। उनसे पहली मुलाकात के बाद प्रभुपाद उदासीन बने रहे। यद्यपि यदि ठीक अनुबंध हो जाए तो इमारत खरीद लेने में उनकी रुचि थी। ब्रह्मानंद श्रीमान प्राइस से बात चलाता रहा। श्रीमान प्राइस ने बताया कि इमारत के मालिक शीघ्र ही भक्तों द्वारा यह प्रमाण देने की आशा रखेंगे कि वे धनराशि अदा करने में सक्षम है। प्रभुपाद के आदेश पर भक्तों ने एक वकील तय किया कि वह संविदा पत्र को देख ले। प्रभुपाद ने कहा, यह श्रीमान प्राइस हमें बहुत दुख दे रहे हैं। वकील ने पूछा, कठिनाई है, आप सीधे मालिक से क्यों नहीं खरीद लेते? इन दलालों की क्या आवश्यकता है? वकील को श्रीमान प्राइस की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई। ब्रह्मानंद बोला, यहाँ का तरीका यही है। तो हम प्रभुपाद लीलामृत यहीं समाप्त करते हैं, समय भी हो चुका है। श्री प्रभुपाद महाराज की जय। तो अभी कीर्तन होगा मंदिर में 12 घंटा तक, तो सभी कीर्तन में भाग ले सकते हैं। हरे कृष्ण।